ਸੋਚ
ਰਮ ਲਈ ਸ਼ੌਤ੍ਰਿਕਾਲ ਵਰਤੀ ਅਰਹੰਤਾਣੰ ਰਮ ਲਈ ਸ਼ੌਤ੍ਰਿਕਾਲ ਵਰਤੀ ਸੀਤਾਣੰ ਰਮ ਲਈ ਸ਼ੌਤ੍ਰਿਕਾਲ ਵਰਤੀ ਆਈਰੀਆ ਰਮੋਲੋਈ ਸ਼ੁਕਾਲ ਵਰਤੀ ਉਪਜਾਇਣ ਰਮੋਲੋਈ ਸ਼ੁਕਾਲ ਵਰਤੀ ਸ਼ਵਸ਼ਾਵਣ ਓਂਕਾਰ ਬਿੰਦੂ ਸੰਯੁਕਤਮ ਨਿਤਿਯਮ ਧਿਆਯਂਤਿ ਯੋਗਿਨਾ ਕਾਮਦਮ ਮੋਕਸ਼ਦਮ ਚੈਵ ਓਂਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮ ਮੰਗਲਮ ਭਗਵਾਨ ਵੀਰੋ ਮੰਗਲਮ ਗੌਤਮੋ ਗਣੀ ਮੰਗਲਮ ਕੁੰਕੁਲਾਰਿਯੋ ਜੈਨ ਧਰਮੋਸ਼ਟ ਮੰਗਲਮ ਸਰਵਮੰਗਲ ਮਾਂਗਲ್ਯਮ ਸਰਵਕਲਿਆਣਕਾਰਕਮ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನಂ ಜೈನಂ ಜಯತು ಶಾಸನಂ ನಮಃ ಸಮಯಸಾರಾಯ ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯ ಚಕಾಶತೆ ಚಿತ್ಸ್ವಭಾವಾಯ ಭಾವಾಯ ಸರ್ವಭಾವಾಂತರಚಿತೆ ಹೇಗೋ ಮೇ ಶಾಶ್ವತೋ ಪಾದನಾಂ ದರ್ಶನ ಲಕ್ಷಣ ಶೇಷಾ ಮೇ ಬಾಹಿರಾ ಭಾವಾ ಸ್ವಮೇ ಸಂಯೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಮಾರೋ ಸುಶಾಶ್ವತ ಏಕ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಲಕ್ಷಣ ಜೀವ ಛೆ ಬಾಕಿ ಬದಾ ಸಂಯೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಭಾವ ಮುಕ್ತಿ ಬಾಹ್ಯ ಛೆ ਦੁਸ਼ਤਾਫ ਨਿਜਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਪੰਥੇ ਵਿਆਹ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਹਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜਨੀ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵਿਹਾਰ ਪਰ ਦ੍ਰਵੀ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਮ ਸ਼ਿਤੇ ਵੀ ਨਮ ਸ਼ਿਤੇ ਕੁਲਕੁਲ ਆਚਾਰਿਯ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਰਚਾ ਹੁਆ ਇਹ ਸਮਯਸਾਰ ਕੀ ਪਰਮਾਗਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਸਕੀ ਜੀਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਚੌਦਵੀਂ ਗਾਥਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਦਵੀਂ ਗਾਥਾ ਮੇਂ ਜੋ ਪਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਾ ਦੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੇ ਆਪਣਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਸੁਭਾਵ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਮੇਂ ਪਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੇ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਸੁਭਾਵ ਬਤਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਤਨੇ ਪਰਿਆਯ ਭਾਵ ਹੈ उसका निषेध करके अवध स्पष्ट आदि पांच भाव की सत्ता एक रूप अवेद नित्यपने कैसे रहती है वो आचार्य भगवान दिखा के फिर उसके समीप जो जीव चला जाता है उसको वो शुद्धात्मा की अनुभूति हो जाती है और उस समय वो अनुभूति वो ही आत्मा है। अनुभूति कहो शुद्ध नहीं कहो कि आत्मा कहो सब एकार्थ है ऐसा ये गाथा में कहना चाहते हैं। क्रम क्रम से सब बोल लिखा है मगर आत्मा में अंदर सब अक्रम से होता है। तो ये पांच बोल की जो चर्चा है उसमें चार बोल तक की चर्चा तो अपन ने ले ली है, पांचवा बोल की चर्चा और भावार्थ जितना चलेगा उतना अपन लेके ये चौदहवीं गाथा की पूर्णता करेंगे। देखो ये चौदहवीं गाथा में समझने योग्य मूल बात क्या है कि आत्मा के दो स्वभाव होते हैं, एक द्रव्य स्वभाव होता है एक पर्याय स्वभाव होता है। दोनों स्वभाव आत्मा के होते हैं और वो दोनों स्वभाव में से एक स्वभाव तो नित्य स्थिर रहता है और दूसरा स्वभाव नियम से प्रति समय परिणमन रूप रहता है। ऐसे दो स्वभाव की चर्चा यहाँ करके नित्य स्थिर जो द्रव्य स्वभाव है वो तो अचल परमात्मा है, नित्य स्थिर बिंब ध्रुव है, ऐसा टंकोत्कीर्ण आत्मा है जिसको टंकोत्कीर्ण माने वधगट से जुदा अघटित घाट बोला जाता है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, वो तो प्रथम से ही जैसा है वैसा ही है। ऐसा जो एक द्रव्य स्वभाव है उसमें तो कुछ फेरफार नहीं होता है, वो तो अनादि अनंत एक रूप रहता है, चैतन्य तत्व तत्व रूप रहता है। मगर उसके साथ में जो दूसरा परिणमन स्वभाव होता है, पर्याय स्वभाव जिसको बोला जाता है, वो परिणमन स्वभाव में प्रति समय माने कि परिणमन चलता रहता है, हानि वृद्धि भी उसमें होती रहती है, वधघट भी उसमें होती रहती है, और वो परिणाम स्वभाव में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी लागू पड़ता है, जो द्रव्य स्वभाव में कोई प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध कभी भी लागू पड़ता नहीं है। क्यों लागू नहीं पड़ता है द्रव्य स्वभाव में और पर्याय में क्यों लागू पड़ता है? क्योंकि जो परिणमनशील पर्याय होती है, परिणमनशील जो वस्तु होती है, उसी में निमित्त नैमित्तिक की सापेक्षता लगती है। जो अपरिणमनशील पदार्थ है, चैतन्य तत्व है, सदा ही निर्लेप रहता है, उसको सचमुच में कोई लेप ही नहीं लगता, क्योंकि उसमें परिणमन ही नहीं रहता है। इसलिए वो स्वभाव जो है उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध कभी लागू पड़ता नहीं है। कर्ता कर्म संबंध भी एक द्रव्य और एक पर्याय के बीच में होता है, मगर उस समय भी त्रिकाली द्रव्य तो अकर्ता ही रहता है, मगर पर्याय में पर्याय से ही पर्याय का कर्ता कर्मपना चलता रहता है। ऐसे संबंध से अपन देखें तो पर्याय में जो भी कुछ हो रहा है वहाँ कुछ न कुछ संबंध दिखता है, मगर पर्याय का स्वभाव भी दो प्रकार से चलता है। एक उसका निरपेक्ष उपादान स्वभाव भी है और एक उसका सापेक्ष निमित्त नैमित्तिक स्वभाव भी है। तो पर्याय में वो पर्याय को भी जीव कैसे देखता है उसके ऊपर वो पर्याय की नज़र द्रव्य पर जाती है कि पर्याय की नज़र पर्याय पर रहती है कि पर्याय की नज़र पर पड़ जाती है, उसका आधार रहता है। क्योंकि नज़र करने वाली तो पर्याय होती है, नज़र तो करनी है द्रव्य की, जाना है तो द्रव्य में। पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला ना भी कि ये सब समझकर, सब सुनकर, सब निर्णय करके पर्याय की दृष्टि छोड़ के द्रव्य की दृष्टि करना है, माने कि पर्याय को छोड़ के द्रव्य में जाना है। तो यहाँ ये चौधरी गाथा में पूरी जो बात कही गई है वो द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान बताया है, और वास्तव में भेद ज्ञान प्रमाण के द्रव्य में ही होता है। कोई परसत्ता के साथ तो भेद ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वो परसत्ता तो अपने से प्रत्यक्ष पृथक है, इसलिए उससे तो भेद ज्ञान करने का कोई मन की प्रयत्न करे तो भी वो भेद ज्ञान की बात ही नहीं है सचमुच में। इसलिए ये यहाँ द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान की बात बताई गई है। कोई भी प्रकार का संबंध द्रव्य और पर्याय के साथ एक दूसरे को देखना, उसका नाम ही अज्ञान दशा है, कोई भी प्रकार का संबंध, क्योंकि दोनों की सत्ता पृथक पृथक है, उसमें कोई भी प्रकार का संबंध बिल्कुल हो सकता नहीं है। नित्य तावदात्म तो है ही नहीं, और कोई अपेक्षा से अनित्य तादात्मपना बोला जाता है, मगर अनित्य तादात्मना में भी नित्यपना कायम रहता है, वो अनित्य के साथ कभी जुड़ता नहीं है। ऐसी कोई द्रव्य पर्याय की ये पृथक पृथक सत्ता बताने वाली ये 14 नंबर की गाथा है। ये 14वीं गाथा में एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव इतनी ही चर्चा है, उसके बाहर कोई चर्चा नहीं है, मगर पर्याय में जो भी परिणमन हो रहा है वो परिणमन ऐसा परिणमन कैसे हुआ वो बताने के लिए भी उसने निमित्त नैमित्तिक संबंध से चर्चा यहाँ की है। तो वो अपन ये पांचवा बोल में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा आती है, मोह के साथ संयुक्तपना कैसा है और बाह्य में क्या है, उसकी पर्याय में क्या हो रहा है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी अपना जो चैतन्य स्वभाव अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त पांच भाव स्वरूप एक त्रिकाल चैतन्य परमात्मा है, वो तो असंयुक्त 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 ऐसा ही रहता है, वो कभी पर्याय से ही संयुक्त नहीं होता। तो पर्याय जिसको संयुक्त करे, पर्याय जिसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बांधे, उसके साथ तो वो असंयुक्त स्वभाव संयुक्त कैसे होगा, वो तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। ये बद स्पष्ट आदि भाव में सब पर्याय की समझ बताई गई है, अबद स्पष्ट आदि पांच भाव में द्रव्य की समझ बताते हैं। इसलिए दो विभाग करके इसको जब समझेगा तब उसको द्रव्य पर्याय की पृथकता यथार्थ उसके ख्याल में आ जाएगी। जब उसको
पर्याय को, जो पर्याय को अभूतार्थ कहता है, वही पर्याय द्रव्य के समीप जाके अपने भूतार्थ स्वभाव को देखती है। जो पर्याय को अभूतार्थ वो जानता है, जो पर्याय को वो अभूतार्थ मान लेता है, तो पर्याय को अभूतार्थ माना, मगर वो पर्याय क्या करती है कि वो पर्याय द्रव्य के समीप जाके द्रव्य को देख लेती है। तो वो पर्याय द्रव्य के समीप जाके देख लेती है तो वो पर्याय भी आत्मा बन जाती है, तो वो पर्याय भी भूतार्थ हो जाती है। ऐसा इसमें ये गाथा में बताना है। देखो आचार्य भगवान के कथन होते हैं, उसमें सब तरीके की बात आती है। उसमें अपने को अपनी दृष्टि कहाँ करना, द्रव्य पर्याय का ज्ञान करके वो ज्ञान को भी दृष्टि में से छोड़ के, राग को तो दृष्टि में से छोड़ना ही है, मगर राग संबंधी का ज्ञान अपने में होता है और ज्ञायक का ज्ञान भी अपनी ज्ञान पर्याय में होता है, पर्याय का ज्ञान अपनी ज्ञान पर्याय में होता है, द्रव्य का ज्ञान अपनी ज्ञान पर्याय में होता है। ऐसी ज्ञान पर्याय की भी दृष्टि छोड़कर वो दृष्टि को द्रव्य की समीप जाके द्रव्य को कैसे देखना, उसकी विधि यहाँ चौदहवीं गाथा में बताई गई है। देखो ये चौदहवीं गाथा, ये पांच बोल से जो बताया गया, पहला बोल अबध स्पष्ट का आया, उसमें बध स्पष्ट आदि भाव का निषेध करके आत्मा को अबध स्पष्ट बताया। दूसरा बोल में अन्य अन्य गति चारों गति का निषेध करके अपना स्वभाव अनन्य है, अपना गुणों से अनन्य है, अपना स्वभाव से अनन्य है, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अनन्य अखंड है, ऐसा बताया। तीसरा बोल में समुद्र में जो भर्ती ओट चल रही है, हानि वृद्धि पर्यायों में चल रही है, उससे भी अपना नित्य स्थिर स्वभाव, नित्य स्थिर समुद्र है, ऐसा ही अपना चैतन्य स्वभाव नित्य स्थिर है, ऐसा बता के पर्याय दृष्टि छुड़ा के द्रव्य दृष्टि की बात की। और चौथा बोल में जो बात बताया वो गुणभेद की चर्चा करी। पहला बोल में कर्म का सापेक्षपना निकाल के अबध स्पष्ट दशा बताई, दूसरा बोल में गति की सापेक्षता को निकाल के अनन्यपना बताया, तीसरा बोल में पर्याय की सापेक्षता को निकाल कर त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि कराने के लिए यहाँ वहां उसको चैतन्य समुद्र बताया, चौथा बोल में उसने पर्याय का, तीसरा बोल पर्याय भेद का, चौथा बोल गुणभेद का आया, वो गुणभेद की दृष्टि छोड़ा के अभेद गुणी की दृष्टि कराने के लिए वो सुवर्ण का दृष्टांत देके अपने चैतन्य स्वभाव में कैसे दृष्टि होवे कि पर्याय का भेद का लक्ष्य भी छोड़ दे, गुण का भेद का लक्ष्य भी छोड़ दे और तू गुणी पर चला जा, आत्म स्वभाव की समीप जाके तू गुणी को देख ले तो तुझे चैतन्य स्वभाव अनुभूति में आ जाएगा। ऐसा चार बोल की यहाँ बात करके अभी पांचवा बोल की चर्चा जो कर रहे हैं, वो पांचवा बोल बद्ध स्पष्ट आदि भाव से देखो तो संयुक्तपना का बोल है, और अबध स्पष्ट आदि भाव से देखो तो वो असंयुक्तपना का बोल है। उसमें जो आचार्य भगवान ने जो दृष्टांत दिया है वो अभी उसको शुरू करते हैं, मूल में निकालना भैया। पांचवा बोल, जैसे जल का माने पानी का, अग्नि जिसका निमित्त है, जड़ है वो एक पदार्थ है, अग्नि है वो दूसरा पदार्थ है, जड़ का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ अग्नि होती है, उसका लक्षण उष्णता होता है, पानी होता है और पानी का लक्षण शीतल होता है, वो पानी का लक्षण शीतल है और अग्नि का लक्षण उष्णता है। अग्नि तो द्रव्य है, उष्णता उसका लक्षण है, पानी तो द्रव्य है, शीतलता उसका लक्षण है। तो जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तपणा रूप तप्तपणा रूप अवस्था से अनुभव करने पर जड़ को उष्णपणा रूप संयुक्तपणा भूतार्थ है, सत्यार्थ है। क्या बता रहे हैं कि जब जल जो होता है वो माने कि उष्णता के निमित्त से जल की पर्याय में उष्णता प्रकट होती है, तब उसको जल को और उष्णता को संयुक्तपणा भूतार्थ है ऐसा कहा जाता है। ये जल और अग्नि एक दोनों एक में कभी नहीं होते, कभी एक में हो ही नहीं सकते, मगर जल के साथ में अग्नि को देख के, अग्नि का निमित्तपना देख के, अग्नि की उष्णता देख के, जल की शीतलता, अग्नि की उष्णता, जल की पर्याय में शीतलता, अग्नि की पर्याय में उष्णता, मगर वो जल की पर्याय का और उष्णता की पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध से जब देखा जाए तो जल में भी उसकी पर्याय में उष्णता का ख्याल आता है कि जल की पर्याय उष्ण हो गई है। जल शीतल स्वभावी है, जल की पर्याय उष्ण हुई है। जल की पर्याय उष्ण कैसे हुई है कि पहली बात तो ये है कि उसको निमित्त का संग हुआ, तो निमित्त का संग में उष्णता थी, अग्नि थी, तो उसका संग से पानी की पर्याय भी उष्ण हुई ऐसा कहा जाता है। पानी की पर्याय अपने षटकारक से उष्ण होने का स्वकाल था, तो उस समय उष्ण हुई, तो उस समय बाह्य में निमित्त कौन था, तो बाह्य में अग्नि महानिमित्त थी, तो अग्नि की पर्याय की सापेक्षता से पानी की पर्याय में उष्णता हुई ऐसा कहने में आता है। सचमुच में पानी की पर्याय इसे ही बोलते हैं कि जो पानी जैसी होवे, जो पानी जैसी पर्याय पानी की नहीं होवे, उसको जिनेन्द्र परमात्मा आचार्य भगवान पानी की पर्याय नहीं बोलते हैं। अभी पानी की पर्याय में उष्णता हो गई तो उष्णता लक्षण तो अग्नि का है, तो अग्नि का लक्षण पानी का लक्षण में कभी आ ही नहीं सकता। अग्नि का लक्षण अग्नि के साथ अभेद होता है, पानी का लक्षण पानी के साथ अभेद होता है। आप लक्षण से देखो तो एक पदार्थ का लक्षण दूसरा पदार्थ का लक्षण के साथ कभी मिलजुल सकता नहीं है, मगर निमित्त नैमित्तिक संबंध की जब चर्चा चले तो ऐसा भी कहा जाता है कि पानी की पर्याय उष्ण हो गई है, मगर उष्ण कैसे हुई तो वो बताया जाए कि उसके साथ में अग्नि का माने कि निमित्त संबंध हुआ तो पानी की पर्याय में उष्णता प्रकट हुई। निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो जीव नित्य नियम देखता रहता है, जो देखता रहता है अनादि से निमित्त नैमित्तिक संबंध से, उसको कभी अकर्ता स्वभाव पर कभी वो आ सकता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध में नियम से जीव को कर्ता कर्म की भ्रांति हुए बिना नहीं रहती। उसको ऐसा ही लगता है कि अग्नि से ही मेरी पर्याय उष्ण हो गई है, जल की पर्याय अग्नि से ही उष्ण हो गई है, मगर वो उष्णता का लक्षण पानी का है ही नहीं। पानी का लक्षण पानी जैसा होता है, पानी शीतल है तो उसका लक्षण भी शीतल होता है, इसलिए पानी का लक्षण से पानी को देखा जाए तो वो उष्णता हुई है, वो अग्नि का लक्षण है, वो अग्नि का लक्षण अग्नि के साथ अभेद रहता है, तो पानी की उष्ण पर्याय को भी अग्नि के साथ उष्णता को अभेद करके पानी का द्रव्य स्वभाव को जो देखता है उसको पानी पानी और पानी ही दिखता है। एक ऐसा हुआ कि किसी को बोला कि भैया ये पानी, आप पानी की ये समझो कि ये क्या बोलते हैं, डोल बोलते हैं ना, बाल्टी बोलते हैं ना, तो वो पानी तो शीतल है, तो बोले कि अभी पानी तो अग्नि के निमित्त से उष्णता हो गई है, तो बोले भाई तुम ऐसा करो कि तुम प्रयोग करना, प्रयोग करके देखना कि पानी की पर्याय शीतल है कि पानी की पर्याय उष्ण है, ऐसा प्रयोग करके देखना। ऐसे ही ऐसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि उंगली डालते हैं तो गर्म भी दिखती है, ऐसा दिखता है ना, मगर ये स्वभाव का माप चर्म चक्षु से निकलता नहीं है, जड़ से चेतन का माप निकल सकता नहीं है। तो उसको कहा कि भाई तू प्रयोग करके चेक कर लेना, तो उसने प्रयोग किया, क्या गरम पानी की बाल्टी भरी हुई थी, वो पूरी गरम पानी की बाल्टी शरीर पे डाल दी, तो उसने प्रयोग किया। अरे भैया प्रयोग ऐसे नहीं होता है, प्रयोग तो अपने ज्ञान में होता है, प्रयोग इस तरीके से करने जाओगे तो आपको तो कहां जाना पड़ेगा, ऐसे प्रयोग आचार्य भगवान कभी नहीं कहते हैं करने का। प्रयोग किसे बोलते हैं कि लक्षण भेद से तू उसकी भिन्नता पहले पहचान ले, पहले लक्षण दे, लक्षण से ही कोई भी पदार्थ की भिन्नता देखी जाती है। लक्षण के बिना कोई पदार्थ की पृथकता कोई जीव को पता नहीं चलती। आत्मा का लक्षण क्या, तो कि आत्मा का लक्षण बिना है। पानी का लक्षण क्या, तो कि पानी का लक्षण शीतलता। अभी पानी गर्म हो गया है, अभी गर्म पानी को आप ऐसे न ऐसे थोड़ी देर रखोगे तो वो शीतल ही हो जाएगा, क्योंकि वो शीतल पर्याय अपना शीतल स्वभाव को कभी छोड़ती ही नहीं है। वो उष्ण पर्याय जो है वो अग्नि सापेक्षता से कहा जाए। अभी और एक दृष्टांत देता हूं आपको। पहले के जमाने में क्या था, अभी तो ये गीजर वगैरह सब आ गया ना, तो गीजर वगैरह सब आ गया, इसलिए किसी को पता ही नहीं चलता है कि उष्णता कैसे होती है पानी में। पहले के जमाने में क्या था भाई साहब, कि वो चूल्हा जलाते थे, चूल्हा उसके ऊपर में बर्तन रखते थे, बर्तन में पानी रखते थे, और तब पानी गर्म दिखता था। गर्म होता नहीं है पानी, समझना, पानी कभी गर्म आज तक हुआ ही नहीं, उष्ण हुआ ही नहीं पानी आज तक। तो अभी वो चूल्हा जलाया, उसके ऊपर बर्तन रखा, बर्तन में पानी डाला। अभी मैं ये कहता हूं कि आप ऐसा मुझे पानी बता दो कि जो वो पानी अग्नि को स्पर्श करता हो। अग्नि को स्पर्श किए बिना वो पानी गर्म होता है। अग्नि अग्नि में रहती है, बर्तन बर्तन में रहता है, पानी पानी में रहता है, पानी का स्पर्श होता ही नहीं अग्नि को कभी। ऐसा लगता है ना कि पानी का स्पर्श अग्नि को होता है ना, इसलिए पानी गर्म होता है। बिल्कुल झूठ बात है। ऐसा बना आज तक नहीं बना, ना तो अनंत काल तक बनने वाला है। ये देखो, सबने देखा है, जिसकी उम्र हो गई उसने देखा होगा, ऐसे ही गर्म होता था पानी है? तो वो पानी कैसे गर्म हुआ, तो कि कोई संबंध नहीं उसके साथ, उसकी तत्समय की योग्यता, उसकी तत्समय की योग्यता उष्ण होने की थी तो उष्ण हो गया। अगर अग्नि का स्पर्श पानी को हो जाए ना, अग्नि का स्पर्श पानी को हो जाए तो क्या हो जाए, अग्नि ही नहीं रहे, होता ही नहीं स्पर्श उसको, वो तो स्वयं सिद्ध है। अपनी क्षणिक उपादान शक्ति से होता है सब, तत्समय की उपादान में क्षणिक उपादान से ही कार्य होता है। कभी निमित की अपेक्षा कोई कार्य में अपनी पर्याय को बिल्कुल होती नहीं, ऐसा ये स्वतंत्रता का ढंडेरा पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया है। कोई पर्याय दूसरे को तो छूती नहीं, मगर मेरी पर्याय मेरे द्रव्य को छूती है, वो भी व्यवहार है। अपनी पर्याय में अपने षटकारक से परिणमन होता है, वही पर्याय का सत्पना है, पर्याय का निरपेक्षपना है, पर्याय की तत्समय की योग्यता है, पर्याय के षटकारक से होती है, वही पर्याय का स्वभाव है असल में। तो यहां ये कहते हैं कि जल को अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तपना तप्तपना अवस्था से अनुभव करने पर, उष्णपना संयुक्तपना भूतार्थ है सत्यार्थ है, तो भी एकांत शीतलता रूप जड़ स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर, एकांत शीतलता रूप जड़ स्वभाव की समीप जाके अनुभव करने पर उष्णता का संयुक्तपना अभूतार्थ है और असुता असत्यार्थ है। जब वो शीतल पानी की समीप जाके देखता है तो उसको तो पानी 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 और शीतलता 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 ही दिखती है। उष्णता हुई नहीं जब पानी की पर्याय में उष्णता हुई है। जब पानी की पर्याय उष्ण दिखती है तब सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र परमात्मा और ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हमें तो वो पानी की पर्याय में शीतलता ही भासित होती है, हमें उष्णता दिखती ही नहीं उसमें, तुम्हें दिखती है, क्योंकि तुम्हारी नजर मूल पानी पे नहीं गई, इसलिए तुमको पानी की पर्याय उष्ण दिखती है। पानी की पर्याय पानी जैसी हो वही पानी की पर्याय है भैया। पानी की पर्याय पानी की पर्याय पानी से अलग होवे उसको हम पानी की पर्याय नहीं बोलते। प पर्याय द्रव्य की पर्याय देखना हो तो भी वो द्रव्य जैसी हो वही द्रव्य की पर्याय होती है। द्रव्य से अनमनता भाव हो, विजाति वाला भाव हो, पृथक भाव हो, माने कि जुदा पड़ने भाव हो, चला जाने वाला भाव हो, द्रव्य का साथ सदाए रहने वाला जो भाव न हो, उसको हम द्रव्य का भाव कभी बोलते ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी लोग फरमाते हैं कि जब हम शीतलता के समीप जाके देखते हैं तो ना तो हमें द्रव्य में तो उष्णता है ही नहीं, द्रव्य तो शीतल ही है, गुण भी शीतलता रूप है और उसकी पर्याय भी हमें तो शीतल 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 ही भासित होती है। अरे भैया, अभी बाल्टी में गरम एकदम पानी डाला है, धुएं भी निकल रहे हैं, और जो समझदार पुरुष है जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया या तो वो आत्मा का अनुभव की समीप जो पहुंचा है उसको ऐसा ही लगता है कि पानी उष्ण हुआ ही नहीं है, उसको धुआं दिखता है तो वो अग्नि का स्वभाव कहके उसको वो धुएं को अग्नि में डाल देता है और पानी की शीतलता को प्रकट करने क्या पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट कर देता है। इसमें ये दृष्टांत में ये मर्म है, जो द्रव्य का स्वभाव हो ऐसा ही पर्याय का स्वभाव जब तुम्हें दिखेगा तब ही पर द्रव्य से पृथकता तुम्हें भासेगी, नहीं तो पर द्रव्य और स्वद्रव्य की पर्याय का संयुक्त पना ही दिखता रहेगा। ऐसा कर करके कि ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त से हुआ है, निमित्त से हुआ है, निमित्त से हुआ है, निमित्त किंचित कर है, निमित्त किंचित कर है, मगर निमित्त है सही, प्योर निमित्त का पक्ष वाला है, प्योर निमित्त का पक्ष है। उपादान की उसको एक अंश भी मात्र खबर नहीं है, उसको अभिप्राय में पड़ा है कि निमित्त से उष्णता हुई है, अगर अग्नि नहीं होती ना तो उष्णता पानी में कहां से आती, ऐसे तर्क भी करते हैं लोग, उष्णता अग्नि होती नहीं तो उष्णता होती कैसे है, बाह्य में कोई ऐसा कर्म का संयोग होता ही नहीं तो यहां राग होता कैसे है, कर्म है ही नहीं तब तो राग नहीं होता, अभी कर्म है इसलिए तो राग होता है, वो कुछ करता नहीं है कर्म, मगर निमित्त तो है, निमित्त तो है, निमित्त तो है, माने कि उसको उपादान ओझल हो गया है, उपादान दिखता ही नहीं, उपादान निमित्त ही दिखता है। हमारे लालचंद भाई बोलते थे, आदरणीय लालचंद भाई, उपादान वाला ऊपर चढ़ता है, निमित्त वाला हमेशा नीचे गिरता है। उपादान से जो कोई भी पदार्थ को देखता है वो नियम से ऊपर ही चढ़ता जाता है, उसको श्रेणी कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। श्रेणी आके वितरकता होके केवल ज्ञान में आरूढ़ होके सिद्ध सा प्रकट हो जाती है। उपादान से दरेक पदार्थ को देखना सीख जाओ, निमित्त का ज्ञान कराते हैं तब वो ज्ञान पे भी दृष्टि मत डालो बार बार, एक बार समझ लो निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं देखोगे ने, समझोगे नहीं, उसका ज्ञान भी नहीं करोगे तो वो पर्याय का आत्मा करता दिखने लगेगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध आत्मा को अकर्ता सूचित करता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान भी जिसको नहीं हो उसको उसकी पर्याय का आत्मा ही करता भासता है, आत्मा है अकर्ता। अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान हो जाए तो उसको पता चलता है कि ये उष्णता तो अग्नि के साथ भेद है, मेरी पर्याय तो मेरे द्रव्य के साथ भेद है, ऐसा भेदज्ञान हो जाता है। इसलिए सब विषय जितने आते हैं शास्त्र में सब यथार्थ रूप से समझना चाहिए, मगर समझ कर वहां फिर चोटना नहीं चाहिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसमें से निकलता ही नहीं जीव, अपने में तो कुछ है ही नहीं, जैसे सब निमित्त से ही हो रहा है, निमित्त नहीं होता ऐसा थोड़ी होता, निमित्त नहीं होता ऐसा थोड़ी होता, ऐसी दृष्टि बन जाती है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि या तो तू त्रिकाली उपादान से अपने स्वभाव को देख, त्रिकाली को पर्याय को देखना है तो क्षणिक उपादान से देख, अभी उसमें विभाव प्रकट हो रहा है तो वो भी क्षणिक अशुद्ध उपादान है, पर्याय में पर्याय से हुआ है, और उसमें स्वभाव की प्राप्ति हो गई तो क्षणिक उपादान शुद्ध उपादान से हुआ है, निमित्त के साथ बिल्कुल संबंध नहीं है, कोई संबंध है ही नहीं निमित्त के साथ, ऐसा कहते हैं। ऐसी इस तरह कर्म जिसका निमित्त है ऐसा मोह के साथ संयुक्तपणा रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तपणा भूतार्थ है। जब वो तो यहाँ मोह की प्रकटता होती है ना पर्याय में, तब वहां निमित्त होता है, वहां निमित्त है, इसलिए यहाँ मोह बिल्कुल नहीं होता है। यहां जब मोह की पर्याय प्रकट हो गई, राग की पर्याय प्रकट हो गई, उसको क्षणिक उपादान से तू न देख सकता हो तो तुझे ऐसा विचार आता है कि बाह्य में निमित्त कौन है, तो के वहां मोह में दर्शन मोनिका कर्म का उदय निमित्त बने है, मगर वो उसकी सत्ता में है। सचमुच में तो यहां दर्शन माने कि यहां मोह हुआ ने, वो भी पुद्गल की सत्ता का परिणमन है, वो मेरी सत्ता का परिणमन नहीं होता, क्योंकि मेरी सत्ता का परिणमन मेरे जैसा होता है। मेरा नायक में ऐसा कोई गुण नहीं है कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करे, इसलिए मेरा नायक में जितने गुण है उसका परिणमन हमेशा शुद्ध रूप उस रूप ही रहता है, इसलिए वो परिणमन मेरा है ही नहीं, जिसके लक्ष्य से होता है उसका ही वो परिणमन होता है। समय सार अजीव अधिकार में ये बहुत बातें आई है, 39 गाथा से 67 गाथा तक का अजीव अधिकार है, वो बहुत बारीकाई से पूज्य गुरुदेव सिंह का प्रवचन में सुनने लायक है। संयम लब्धि के स्थान, मार्गणा स्थान, जीव स्थान, गुण स्थान सब पुद्गल में डाल दिया, सब पुद्गल है। जीव मात्र चैतन्य सत्ता स्वरूप है, जीव मात्र ज्ञानमय है, जीव मात्र अनंत गुणात्मकमय है, जीव मात्र असंख्य प्रदेशी है, जीव मात्र निर्विकल्प वस्तु है, जीव मात्र त्रिकाल है। ऐसा निर्विकल्प वस्तु मात्र, ऐसा असंख्य प्रदेशी मात्र, ऐसा त्रिकाल काल मात्र, ऐसा आनंद गुणात्मक भाव मात्र, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कभी भी खंडित नहीं होने वाला ऐसा अखंडित चैतन्य परमात्मा वो मैं हूं। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल का भी भेद को छोड़ के अखंड परमात्मा है, वही मैं हूं, और वो मैं हूं उसकी पर्याय उसके जैसी होती है, उससे जुदी पर्याय वो जो होवे वो सचमुच में जीव की पर्याय ही नहीं होती। और सचमुच में तो देखा जाए तो जीव होता है ना, जीव को परिणाम ही नहीं होता है, जीव है ना, जीव जीव को परिणाम होता ही नहीं, जीव को परिणाम ही नहीं होता है। आप 185 कड़स पढ़ लेना, जीव को परिणाम होता ही नहीं। तो भाई जीव को परिणाम नहीं होता तो परिणाम किसका है? हम बोल रहे हैं कि जीव को परिणाम नहीं होता है, जीव को परिणाम ही नहीं होता, जीव में तो नहीं होता, जीव में तो परिणाम नहीं होता, जीव में तो कोई भाव नहीं होता चार, जीव में तो कोई उत्पाद भी नहीं होता, मगर जीव को भी परिणाम नहीं होता। कि जीव को परिणाम नहीं होता कैसे? कि भैया देखो, जिसके लक्षण पृथक है ने वो जीव नहीं है। परिणाम का लक्षण पृथक है, जीव का लक्षण परम पारिणामिक भाव है, जीव का लक्षण त्रिकाल ज्ञान दर्शन है। वो जीव का लक्षण जीव के साथ जो मिलता है ऐसा लक्षण कोई परिणाम से मिलता नहीं है, इसलिए जीव को परिणाम है ही नहीं, जीव को परिणाम ही नहीं है, जीव में तो नहीं है परिणाम, वो तो दृष्टि का विषय है, जीव में नहीं है परिणाम, अगर जीव का तो है ना, जीव का तो है ना, जीव का परिणाम ही नहीं होता। जीव का परिणाम तू देखता रहेगा एकदम प्रमाण का द्रव्य में खड़ा है, तू तू बोलता है जीव, खड़ा है प्रमाण का द्रव्य में, जीव का परिणाम है, जीव का परिणाम, जीव में तो नहीं है परिणाम, मगर परिणाम तो जीव का है, वो तो जीव में ही परिणाम हो गया भैया, जीव को परिणाम होता ही नहीं, ऐसा जीव परिणामी तत्व है, ऐसा जीव परिणामी है, ऐसा जीव अभेद है, ऐसा जीव कृतकृत्य है, ऐसा जीव परिपूर्ण है, उसकी परिपूर्णता क्षायिक भाव से नहीं होती। अगर उसकी परिपूर्णता क्षायिक भाव से होती तो अभी परिपूर्ण भगवान आत्मा नहीं रहता, इसलिए जीव को परिणाम होते ही नहीं, जीव नित्य अपरिणामी होता है। परिणाम को परिणाम है वो बात भी यहां करने लायक नहीं है। जीव को परिणाम नहीं है, जीव में परिणाम नहीं है, जीव को भी परिणाम नहीं है, तब जीव दिखेगा, तब जीव ख्याल में आएगा, तब जीव की दृष्टि होगी, तब जीव जाज्वल्यमान दिखेगा, तब जीव अनंत गुणात्मक दिखने लगेगा, तब जीव असंख्य प्रदेशी दिखने लगेगा, तब जीव त्रिकाल तब दिखने लगेगा, तब अपन स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त दिखेगा, और वो विशेषण से पार एक रूप दिखेगा। पर्याय तो जीव में है ही नहीं, पर्याय भी जीव की है ही नहीं, गुण का भेद भी जीव में है ही नहीं। तो कह भाई गुण तो है ना जीव में, गुण का भेद तो नहीं है, गुण है गुण है गुण है, तो गुण की दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। गुण जिसको दिखता है वो गुण का भेद को ही देखता है। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, प्रभुत्व है, विभुत्व है, सर्वदर्शित्व है, सर्वमत्व है, स्वच्छत्व है, प्रकाश है, अक्षर कुचित विकासत्व है, परम परम परिणमीय परिणामकत्व है। सब जिसको ऐसे शक्ति भी एक एक दिखती है तो शक्तिवान नहीं दिखता उसको, वो गुण भेद को भी सचमुच में पर्याय ठीकने का विषय में डाल दिया है। स्वरूप ही नहीं है तेरा, वो अखंड गुणी तेरा स्वरूप है। पर्याय भेद तो निकाला, गुण भेद निकाला, और यहां चौदहवीं गाथा में तो उससे भी आगे जाके बात करते हैं, उससे भी आगे जाके द्रव्य का विशेषण बताया अवध स्पष्ट। वो तो द्रव्य ही है अवध स्पष्ट, तो बध स्पष्ट पर्याय है, अनन्य तो द्रव्य है, अन्य अन्य तो पर्याय है, नियत तो द्रव्य है, अनियत पर्याय है, अविशेष तो द्रव्य है, विशेष पर्याय है, असंयुक्त तो द्रव्य है, संयुक्तता पर्याय में होती है। ये पांच विशेषण का विशेषपणा भी द्रव्य नहीं है। पर्याय का भेद निकालो, गुण का भेद निकालो, विशेषण को भी छोड़ो, तब त्रिकाली द्रव्य दृष्टि में आता है। ऐसा यहां चौदहवीं गाथा में मर्म भरा है। जीव को परिणाम होता ही नहीं, क्योंकि चार भाव में जीव का लक्षण कभी व्याप्त होता नहीं, और चार भाव का लक्षण जीव में व्याप्त होता नहीं, इसलिए जीव को परिणाम नहीं होता, जीव में भी नहीं होता, जीव को भी नहीं होता। तब तुझे द्रव्य, सुरक्षित द्रव्य तुझे दृष्टि में आएगा। कुटस्थ, ध्रुव, एक रूप, अखंड, नित्य, स्थिर, निर्बोध, निर्लेप, अपरिणामी, अनादि अनंत, एक रूप, अभेद, भूता, शाश्वत, ऐसा तुझे दृष्टि में तेरा द्रव्य तब आएगा। वो दृष्टि में आवे कि नहीं आवे, मैं तो त्रिकाल द्रव्य हूं, मैं तो अपरिणामी तत्व हूं, मैं तो जीव तत्व हूं, मेरे में परिणाम नहीं है, और मेरे परिणाम नहीं है, वो भी परिणाम में चला गया, वो भी परिणाम की दृष्टि हो गई। ये नास्ति तो अस्थि को बताने के लिए थी। अभी बार 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 परिणाम मेरे में नहीं है, परिणाम मेरे नहीं है, तो वो तो परिणाम को ही देख, परिणाम की अस्थि उसको मालूम है, द्रव्य की सत्ता का महिमा ही नहीं, द्रव्य की सत्ता झाझोल्यमान पड़ी है, एक रूप पड़ी है, नित्य उसमें ध्रुव प्रवाह चलता है, ऐसा चैतन्य का नूर का पूर बह रहा है, बह रहा है अंदर में, प्रवाह ध्रुव प्रवाह ध्रुव प्रवाह ध्रुव प्रवाह निरंतर चल रहा है अंदर में, ऐसा एक कोई झाज्वल्यमान जीवन है अंदर में। ये कोई कुटस्थ माने कोई पत्थर जैसा नहीं है, कल भी बोला था, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसी मेरी परिपूर्णता, मेरी नित्यता, मेरे अनंत स्वभाव, असंख्य प्रदेश, मेरी त्रिकालता, मेरा अवध स्पष्टपणा से भरी पड़ी हुई अंदर में, ऐसा मैं जीव हूं। परिणाम मेरे में नहीं है, परिणाम मेरे नहीं है, वो भी कब तक तू कहता रहेगा? उसका नाम ही तो परिणाम को याद ही करता रहता है, परिणाम को ही याद करता रहता है, उसका मतलब द्रव्य का उसको याद ही नहीं आता, द्रव्य उसको परिणाम से द्रव्य का लक्ष्य करना, परिणाम में द्रव्य को देखना, दृष्टि द्रव्य की करनी, उसका मतलब है कि परिणाम की सत्ता में उसको, परिणाम की सत्ता जब तक द्रव्य की दृष्टि नहीं करेगी तब तक वो द्रव्य ही नहीं बोलेगा। भैया दृष्टि का विषय तो ऐसा है, देखो दृष्टि का विषय जब तक ख्याल में नहीं आता ना तब तक उसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है उसके पास। ऐसा ये चौदहवीं गाथा में दृष्टि का विषय बता रहे हैं। एक रूप स्वभाव है, अखंड स्वभाव है। बाद में जो भी चर्चा चले, तो श्रद्धा की चर्चा भी चले, ज्ञान की भी चर्चा भी चले, जो भी चर्चा चले वो चले, मगर मूल तो यहाँ है कि मैं असंयुक्त हूँ, मैं अबद्ध हूँ, अस्पष्ट हूँ, अनन्य हूँ, नियत हूँ, अविशेष हूँ और मैं असंयुक्त हूँ। कभी पर्याय में आया तो नहीं, क्योंकि पर्याय मेरी है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं आता पर्याय में। अगर पर्याय मेरी होती तो मैं पर्याय में आ जाता, पर्याय है ही नहीं मेरी, क्योंकि मेरा लक्षण उसमें व्याप्ता नहीं है। 185 कलश लिखा है, 185वां कलश में, कि जितना प्रगट है वो सब मैं हूं और जितना प्रगट होता है वो परद्रव्य है। जो भी प्रगट होवे वो परद्रव्य है, जितना प्रगट है वो मैं हूं, क्योंकि मेरा लक्षण मेरे से जुदा नहीं पड़ता, मेरा लक्षण कहीं जाता नहीं, इसलिए वो मेरा है ही नहीं, मैं उसमें हुई नहीं, मेरे में वो आता ही नहीं, इसलिए मैं मेरा त्रिकाली द्रव्य, मेरा अनंत गुण, मेरा परम परिणामिक भाव लक्षण, मेरा असंख्य प्रदेश, मेरी त्रिकारता, मेरी नित्यता, मेरी ज्ञायकता, मेरा निर्विकलता, मेरा शाश्वत स्वभाव, मेरा ध्रुव स्वभाव, ऐसा अखंड पिंड वो मैं हूँ, ऐसा यहाँ चौदहवीं गाथा में कहना चाहते हैं। तो ऐसा स्वभाव उसको ख्याल में आ जाना चाहिए। इतनी इतनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने दो बार प्रवचन कर दिए, नैरोबी का भी चलाया, आज भी चलाया, कितनी अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति बता के अस्ति पे ले जाते हैं। नास्ति का ज्ञान कराते जाते हैं, अस्ति की श्रद्धा कराते जाते हैं, नास्ति का ज्ञान कराते जाते हैं, अस्ति अस्ति दिखाते जाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का 45 साल का उपदेश में ये दोनों बात आई है। पर्याय को पहले रखते हैं, पर्याय को वैसे जैसे अलोकाकाश में भेज देते हैं ऐसा नहीं है। पर्याय पर्याय की सत्ता में है, पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, मगर पर्याय का ज्ञान करा के, पर्याय का ज्ञान हो गया अभी क्या करना तुझे, अभी हो गया तुझे पता चल गया पर्याय ये हो रहा है, पर्याय का ज्ञान हो रहा है, ऐसा हो रहा है उसका ज्ञान भी हो रहा है, सब मालूम पड़ गया, अभी क्या करना है, तो कि अभी द्रव्य की सत्ता जो ऐसे ने ऐसे पड़ी है बस वहां तुझे जाना है, वो ज्ञान हो गया अभी। तो उनकी शैली ऐसी है, पर्याय का ज्ञान कराते जाए, द्रव्य कैसा है वो बताते जाए, और द्रव्य पर दृष्टि कैसे हुए उसकी विधि बताती जाए, विधि बताते जाए, उसका प्रयोग बताते जाए। उपदेश तो देते हैं ज्ञानी, मगर ज्ञानी उपाय भी बताते रहते हैं, उसी को ज्ञानी बोला जाता है। जो उपदेश तो देवे मगर उपदेश दिया उसका उपाय क्या है, वो उपाय दिखा दे आपको कि इसका उपाय ये है, ये रास्ते पे चल तू, मुझे भी ये रास्ते पे चल के अनुभूति हुई थी, तू इस रास्ते पे ऐसे चलेगा तो तुझे भी अनुभूति होगी, होगी ना होगी। अभी प्रकाश भाई दृष्टांत दे रहे थे ना मोर का, मैं वो दे देता हूँ एक दृष्टांत मोर के बारे में। मोर जो है ना, मोर अभी ऐसा दिखता है ना कि भाई पानी में तारा, तो ये पानी का तारा है कि पानी ही है, अभी मोर दिखता है तो पानी का मोर है कि मोर का मोर है, वो वहां तो वो पानी की सत्ता सिद्ध करनी है, बराबर है। अभी भेदान कैसे हो गए उसमें, मोर तो झलक गया, अभी दर्पण में मोर झलक गया, अभी दर्पण का मोर है तो वो तो दर्पण की सत्ता सिद्ध हो गई, अभी दर्पण की सत्ता तो सिद्ध हो गई, मगर अभी दर्पण को देखता है तो भी उसको तो मोर ही दिखाई देता है, तो वो कैसे निकले उसका शल्य, ये प्रश्न है। उसका शल्य निकलना चाहिए ना, अपन तो बोल दिया कि भाई दर्पण है, दर्पण ही है वहां, मोर तो है ही नहीं, वो दर्पण का मोर है तो दर्पण ही, मगर अभी उसको मोर दिखता है उधर, क्योंकि मोर का चित्र तो है उधर, चित्र तो निकला नहीं है अभी, वो दर्पण के सामने देखता है तो वही दिखता है, दर्पण के सामने जाता है तो मेरा मुंह ही दिखता है, दर्पण दिखता ही नहीं मेरे को, अभी उसका सॉल्यूशन कैसे करें अपन, उसका उसका जवाब है, देखो मोर की सत्ता तो मोर में है, दर्पण की सत्ता दर्पण में है, अभी मोर की सत्ता जहां है वहां तो मोर बैठा हुआ है, यहां दर्पण लगाया है ये पूरा, ये अक्षर की सत्ता तो वहां है, यहां तो झलक रहा है वो अक्षर, सत्ता तो उधर है, झलकता है यहां, दिखता है यहां, ये परिणाम तो इसका, उससे कुछ आया नहीं यहां, और यहां से कुछ वहां जाने वाला नहीं है, ये तो स्वच्छता है, ये ज्ञान की स्वच्छता है, उसमें तो कुछ सवाल ही नहीं, सबको मालूम है। अभी ऐसा हुआ कि मोर दिखने लगा, अभी मोर तो था सामने पेड़ पे, जंगल में रहता है मोर तो ज्यादा तरीके से, मोर तो था पेड़ पे और दिखता था यहां, तो उसको बोला सबने कि भाई ये मोर यहां नहीं है भैया, कि नहीं नहीं ये मोर तो मुझे दिखता ही है, आप कैसे बोलते हो नहीं है यहां, इसमें ऐसा बना बन गया कि मोर ने टोका किया, वो क्या बोलता है मोर मालूम है आपको, मैं यहां हूं, वो यही बोलता है, वो और कुछ नहीं बोलता है, वो टोका करता है ना सवेरे, आपको भी सुनना 5:30 बजे, तो वो ऐसा ही बोलता है मैं यहां हूं, ऐसा बोला फट उसको वेदना हो गया, मोर तो वहां है, यहां तो आईना ही है, यहां तो दर्पण 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 ही दिखता है, मोर दिखता ही नहीं, क्योंकि मोर है ही नहीं यहां, मोर ने बोल दिया मैं यहां हूं, वो उसको वेदना हो गया कि ये मोर तो उधर है, उधर मोर है, इधर तो मोर है ही नहीं, मोर का प्रतिबिंब है वो भी व्यवहार है, इधर तो दर्पण 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 ही है, ऐसे भेद ज्ञान होता है, पर द्रव्य से पृथक जब उसको मालूम पड़ जाए तो उसको प्रतिभास रूप की भ्रांति है ना वो भी निकल जाती है कि मोर है ही नहीं यहां, यहां तो दर्पण ही है, मोर है ही नहीं, ऐसे यहां बता रहे हैं कि तू तेरा ज्ञायक भाव है ना उसको निमित नैमितिक समझ से देखता है कि दर्पण में मोर है, मोर का निमित है इसलिए यहां दर्पण दर्पण में उसका माने कि प्रतिभास से उसका आकार बना है, तो के निमित नैमितिक संबंध की तुझे भ्रांति हो गई है, तू छोड़ दे निमित नैमितिक संबंध को, सब को तू उपादान से देखना सीख जा कि अपनी स्व शक्ति से पर्याय में तत्समय की योग्यता से परिणमन हो रहा है, उसका कोई कर्ता होता ही नहीं, ना तो उसका निमित करता है, ना तो उसका त्रिकारी उपादान करता है, पानी की शीतल पर्याय होने में पानी का त्रिकाली द्रव्य का कुछ सहयोग बिल्कुल होता नहीं, के स्वभाव की समीप जाके देखा तब पर्याय में शीतलता आई, तो के शीतलता हुई तब स्वभाव की सन्मुख देखा, क्षणिक उपादान में ये लागू पड़ता है, त्रिकारी उपादान में तो क्षणिक उपादान ही नहीं है, मैं तो त्रिकारी उपादान स्वरूप परमात्मा हूं, मैं तो शाश्वत ध्रुव धाम हूं, मैं तो नित्य अवस्थित चैतन्य परमात्मा हूं, मैं तो अनादि अनंत अखंड परमात्मा हूं, जितने भेद दिखे पर्याय भेद की गुण भेद वो सब सचमुच में पुद्गल में चले जाते हैं, सब पुद्गल की सत्ता में उसके लक्ष्य से होने वाला परिणाम उसका ही होता है। 39 नंबर का कलश में लिया है कि जितने भी ये 42 प्रकार के गुण स्थान मार्गणा स्थान जीव स्थान 14 43 42 प्रकार जो दिए है, एकस्य पुद्गलस्य ही निर्माणम, मेरा कुछ नहीं है, अकेला पुद्गल का चित्रामण है, मेरा तो एक चैतन्य सत्ता में एक नायक देव है, भूतार स्वभाव है, अपरिणामी तत्व है, शाश्वत परमात्मा है, ऐसा यहाँ 14वीं गाथा में सभी जीव के पास ऐसा ही परमात्मा विद्यमान है, किसी को कुछ परमात्मा बनने की जरूरत ही नहीं, वो परमात्मा बना हुआ है, परमात्मा बनने वाला परमात्मा होता ही नहीं। जो परमात्मा बनता है वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा है वही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा को पर्याय ही नहीं होती, जीव को परिणाम ही नहीं होता, जीव तो अपरिणामी है, परिणाम ही नहीं होता जीव को, ऐसा शाश्वत ध्रुव चैतन्य परमात्मा है। ऐसी यहां चौदहवीं गाथा में बता रहे हैं, पांच ये भावार्थ थोड़ा पढ़ के अपन पूरा करते हैं, पांच सात मिनट में, थोड़ा टाइम है ना, पांच मिनट का। देखो भावार्थ में क्या कहते हैं, आत्मा पांच प्रकार से अनेक रूप दिखता है, अनादिकाल से कर्म पुद्गल का संबंध से बंधा हुआ होने से कर्म पुद्गल का स्पर्श वाला दिखता है। देखो यहाँ निमित्त बना लिया है। दूसरा बोल, कर्म का निमित्त के निमित्त से होने वाला नर नारक आदि पर्यायों में भिन्न भिन्न स्वरूप दिखता है, यहाँ भी निमित्त लिया है। दूसरा बोल, तीसरा बोल देखना, अभी ऊपर में कर्म का पुद्गल का निमित्त लिया, दूसरे में भी कर्म का निमित्त लिया, अभी तीसरा बोल, शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद अंश घटते भी है और बढ़ते भी है, वो वस्तु का स्वभाव है, यहां बिल्कुल निमित नहीं लिया है, बिल्कुल निमित नहीं लिया। तेति ते नित्य नित्य एक रूप देखा तो नथी, वस्तु का स्वभाव बताया वृद्धि हानि, माने कि पर्यायगत स्वभाव है उसका, उसको कोई निमित की अपेक्षा है ही नहीं, बिल्कुल निमित्त की सापेक्षता नहीं लगती। देखो बद स्पष्ट में कर्म की सापेक्षता, अन्य अन्य गति में कर्म की सापेक्षता, वृद्धि हानि उसमें क्षणिक उपादान। अभी चौथा वो, वही वो दर्शन दान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखता है, इसमें भी कोई निमित्त संबंध की चर्चा नहीं। ज्ञान दर्शन आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखता है, वो दिखता नहीं है, तू देखता है गुण भेद को, वो तो गुण ही दिखता है, तू गुण भेद करता है, इसलिए वहां निमित्त कुछ लागू नहीं पड़ता। पर्याय की हानि वृद्धि में भी क्षणिक उपादान सिद्ध करके निमित्त नहीं लिया, गुण भेद में भी गुणी ही है, वो गुण गुणी में विलय होता है, इसलिए वहां निमित्त लागू नहीं पड़ता। देखो पांचवा बोल, कर्म का निमित्त से होने वाले मोह राग इसमें निमित्त लिया, पहले दूसरे और पांचवे में निमित नैमित्तिक संबंध से कर्म की सत्ता का निमित नैमित्तिक संबंध से बद स्पष्ट आदि भाव, अन्य अन्य गति का भाव और रागादि भाव को सिद्ध किया, ये सब उपाधियां को छोड़ के अपना जो द्रव्य स्वभाव है वो त्रिकाल है, उसकी जो वर्तमान पर्याय प्रकट हो रही है उसमें हानि वृद्धि क्षणिक उपादान से हो रही है, और जब तक वो हानि वृद्धि और गुणभेद को तू देखेगा तब तक तेरी दृष्टि द्रव्य पे नहीं जाएगी, कर्म की सत्ता को तो इसमें सब निकाल ही दिया तीसरे और चौथे बोल में, क्योंकि उसमें कर्म की सत्ता का कुछ लागू नहीं पड़ता। हानि वृद्धि में पर्याय का माने की स्वभाव देखना, और गुण भेद में तो वो गुण गुणी के ही है, गुण भेद है ही नहीं अंदर में, द्रव्य में गुण भेद है ही नहीं, बिल्कुल गुण भेद नहीं है, वो अभेद गुणी ही है, वो तो गुण भेद तो खुद करता है उसको देख के, वहां कहां गुण भेद है, जब गुण भेद वो करता है तब भी वहां गुण भेद हो जाता है, वो तो गुणी ही रहता है, तेरी दृष्टि में खामी है इसलिए तुझे गुण दिखते हैं, गुणी नहीं दिखता है, इसमें कोई निमित नहीं लेते। देखो तीसरा और चौथा बोल रहे, ये मर्म वाली बात है, वो सब में निमित लिया, क्योंकि वहां दूसरी बातें सिद्ध करनी है, वो निमित का निमित नैमित्तिक संबंध सिद्ध करना है, और कहना क्या चाहते हैं इसमें कि राग मोह राग द्वेष भी होता है ना, वो सचमुच कर्म की सत्ता है, ऐसा कहना चाहते हैं, मनुष्य देव तिर्यंच नारक गति है वो कर्म की सत्ता है, बद्ध स्पष्टपणा है वो कर्म की सत्ता है, गुण भेद है वो तो गुणी ही है इसलिए वो तेरी सत्ता है, और पर्याय में वृद्धि हानि होती है वो क्षणिक उपादान से होती है, वो तेरी पर्याय बोली जाती है, मगर तेरी पर्याय में जो मोह राग द्वेष हुआ तो के वो कर्म की सत्ता है। वो राग कर्म की सत्ता क्यों है, राग से आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, राग चला जाता है, राग अनुभूति के काल में होता नहीं है, राग नियम से पर के लक्ष्य से होता है। राग में कभी सुख व्याप्त नहीं होता है, राग कभी अपने आत्मा की अनुभूति नहीं करा सकता है। इसलिए राग नियम से पुद्गल ही है। पहले तो पुद्गल का परिणमन बोलते हैं राग को अजीव अधिकार में, फिर वहां राग को पुद्गल ही बोल देते हैं कि राग पुद्गल ही है। अरे भैया, जब 14 गुण स्थान, 14 मार्गना स्थान और 14 जीव स्थान को भी जब पुद्गल में डालते हैं तो दूसरी बात तो कहां करना। हाँ, सब भाव, चारों भाव तो मेरे परिणाम ही नहीं है। वो क्षायिक भाव भी देखो, एक और बात बता देता हूं आपको। क्षायिक भाव जो है ना, वो क्षायिक भाव कर्म के अभाव के निमित्त से होता है। पहले भी बताया था मेरे ख्याल, और दूसरी बार बता देता हूं। अब क्या है कि आज की बात भी कल याद नहीं रहती, एक घंटे के पहले की बात भी भूल जाते हैं जीव। बार बार कहने से मजबूती आती है, दृढ़ता होती है। देखो अपने पास कितने भाव है अभी, 3 भाव है ना, परम परिणामिक भाव है, संयोग संभाव है और औदयिक भाव है, बराबर है। अभी समझ लो कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, औपशमिक हुआ, फिर क्षयोपशम हुआ, फिर क्षायिक भी हो गया। आगे जाते जाते ज्ञान तो क्षयोपशम ही रहता है, क्षयोपशम या क्षायिक ही होता है ज्ञान तो, ज्ञान में तो औपशम होता नहीं। तो वो आगे बढ़ता 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 गुणस्थान भी चढ़ गया, श्रेणी चढ़ गया, केवल ज्ञान हो गया, सिद्ध दशा हो गई। अभी सिद्ध दशा में कितने भाव है? 2 भाव है ना, और एक भाव तो चला गया। 2 भाव है, परम परिणामिक भाव और साहिक भाव, 2 भाव है। अभी मैं ऐसा बोलूं कि सिद्ध दशा में साहिक भाव नहीं है तो आप क्या बोलोगे मेरे को? क्यों नहीं है? सिद्ध दशा में साहिक भाव तो है ही। अभी देखो भैया, सिद्ध दशा ऐसी होती है कि वो उसका पहला समय होता है ना, वो पहले समय में ही साहिक भाव रहता है, दूसरे समय में वो सब परिणामिक हो गया, बिल्कुल क्षायिक नहीं रहता वहां। बोला जावे कि क्षायिक भाव और परिणामिक भाव, मगर वहां पूरे अघाती कर्म चले ही गए हैं। दूसरे समय में कोई निमित्त का अभाव की अपेक्षा ही नहीं लागू पड़ती, तो क्षायिक भाव कहां से होगा सिद्ध में? वो तो पहले समय की अपेक्षा से बोला जाता है। सिद्ध में क्षायिक भाव नहीं होता, सिद्ध को भी क्षायिक भाव नहीं होता, सिद्ध को परम परिणामिक भाव द्रव्य, उसका गुण परम परिणामिक भाव, उसकी पर्याय भी सामान्य परिणामिक भाव रूप हो गई है। अभी कोई वहां दूसरे भाव की उपाधि उसको लागू पड़ती ही नहीं। ये सब उपाधियां हैं, क्षायिक भाव उपाधि है, स्वभाव नहीं है वो, इसलिए उपाधि सिद्ध नहीं रखते कभी। केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान का कर्म की सापेक्षता उसको चली गई, सिद्ध हो गया, अघाती कर्म की सापेक्षता भी चली गई। अभी वहां कर्म का निमित्त बना ही नहीं है कोई कि जिसका अभाव करना पड़े उसको, इसलिए उसको क्षायिक भाव नहीं होता, परम परिणामिक भाव ही रहता है, एक ही भाव रहता है, एक ही भाव, एक ही भाव, एक ही भाव। पहले समय में 2 भाव कह सकते हो, दूसरे समय से अनंत सिद्ध हो गए, उसके पास मात्र परम परिणामिक भाव है और कोई भाव नहीं है। पर्याय स्वभाव होने दो, वो सामान्य पारिणामिक हो गया। वो पर्यायिक नहीं का पारिणामिक भी आता है, एक सबके पास रहता है, मगर वहां वो भी नहीं है, वहां सामान्य परिणमन हो गया। वो वहां कोई पर्याय भाव में कुछ नहीं है, वो जैसा परम पारिणामिक भाव ऐसा ही पर्याय में भाव बहता है, इसलिए वहां साहिक भाव नहीं होता। ऐसी सिद्ध दशा को अपने को, ये सिद्ध दशा की तो पहचान हुई, अभी अपने को सिद्ध दशा में जाना है। तो ये 14वीं गाथा है, वो 14वां गुणस्थान से भी पार होके सिद्ध दशा में ले जाने वाली है। इस तरीके से इसका स्वाध्याय करके सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके सिद्ध शिला में विराजमान हो जाए, ऐसी मंगल बात है।